ओम शांति। हम हमारी बहनों को निवेदन करूंगी कि हमारे उपस्थित मेहमानों का गुलदस्ता और बैज से स्वागत करेंगे। बहुत ही सुंदर अभी का विषय है। दो दिन से आप इतना ज्ञान लुटा रहे हैं। आप एक ही मकसद से आए हैं कि खेल में हम विजय कैसे प्राप्त करें, मेडल कैसे ले, यही आपकी एक आखिरी इच्छा होती है। और उसके लिए अपने आप को उस पात्र बनाने के लिए आए हुए हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग विषयों पर क्लासेस हो रहे हैं और सर्वांग व्यक्तिमत्व बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, स्किल्ड हो जाएंगे तो हम यशस्वी हो जाएंगे, लेकिन और भी कितने सूक्ष्म आयाम होते हैं सफलता के, वो भी और आप आगे सुनते जाएंगे। मैं जयश्री बहन मुंबई से स्पोर्ट्स काउंसिलर हूँ, तो मेरे संपर्क में सभी खेल के खिलाड़ी आते हैं और वे तब आते हैं जब उनका सिलेक्शन नजदीक आता है। ज्यादातर क्रिकेटर्स मेरे पास ज्यादा आते हैं कि बहन हमारा सिलेक्शन है और हमको तो सिलेक्ट होना है, तो हमारे पास जादू की कोई का ये है क्या लकड़ी जो हम घुमाए और उनका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के लिए भी ऐसे खिलाड़ी चुने जाते हैं, ढेर सारे ऐसे सिलेक्ट होते हैं और उनमें से और थोड़े सिलेक्ट होने वाले होते हैं। तो हम ये न समझे कि हमारा गेम बहुत अच्छा होगा तो हम सिलेक्ट हो गए, उसके साथ साथ बहुत अनेक बातें आपकी देखी जाती है, आपका व्यक्तिमत्व देखा जाता है, आपका बर्ताव देखा जाता है और गुण देखे जाते हैं, पूरी कंप्लीट पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। अगर किसी को कैप्टन बनाना है तो कैप्टन कैसा चाहिए? धोनी जैसा चाहिए। तो धोनी किस वजह से फेमस है? उनके गुणों की वजह से ज्यादा फेमस है। तो हमें भी देखना होता कि हमारे अंदर ऐसे कौन से और कितने गुण है और कौन सी मिसिंग डायमेंशन है जो सिलेक्शन के लिए उसका संबंध सीधा हो सकता है। आपको एक उदाहरण बताती हूँ जो हमारे एक सीनियर टीचर ने बताया था। उनके नजदीक के रिलेटिव थे, क्रिकेटर था और उनका सिलेक्शन हो गया। सुनिए, सिलेक्शन हो गया और इतनी खुशी हो गई उसको, इतनी खुशी हो गई तो उसकी जो कैप थी ना सिर के ऊपर, उसने निकाली और ये हवा में उछाल दी। सिंपल बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वही बात बड़ी बन गई कि वही उसका सिलेक्शन रद्द हो गया। क्या बात थी? क्या भी तो उछाली थी हवा में उसने, लेकिन उसी वजह से सिलेक्शन रद्द हो गया क्योंकि उसकी एक एक्टिविटी ने उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है वो सिद्ध किया। और सिलेक्टर्स लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ऐसे खिलाड़ियों का, मतलब कि वो हमारे उस प्रकार के टीम के लिए योग्य नहीं है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये गुणों के ऊपर है, और विशेष देखिए क्या क्या है जिसके ऊपर आपकी सफलता डायरेक्ट निर्भर है। डिसिप्लिन, पेशेंस, करेज और ह्यूमिलिटी, नम्रता। इसमें से एक भी गुण अगर माइनस है, नो सिलेक्शन, नो सक्सेस। तो इसी विषयों पर हमारी विशेष अतिथि उस पर प्रकाश डालेंगे ही। अभी शायद बीच में भाई जी पधारे हैं, नमस्ते। तो मिस्टर नीरज खान भाई जी को जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं और बहन को निवेदन करते हैं कि आप ठंडे हो गए क्या बारिश की वजह से? थैंक यू बलवान भाई जी, आप एक की तालियां पूरे हॉल के लिए काफी हो जाती है, बहुत अच्छी एनर्जी पैदा हो जाती है, तो हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में हमारे कीनोट्स स्पीकर है आपके सामने, बीके भारत भूषण भाई जी। इनकी आपको मैं विशेषता सुनाती हूँ, बहुत अच्छा उनका बड़ा बायोडाटा है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि कहां से मैं पढ़ना शुरू करूं, इतना विशेष है। बहु प्रतिभा के आप धनी है। अब ज्ञान मानसरोवर एकेडमी पानीपत में है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहां के आप डायरेक्टर है, साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है, चीफ कोऑर्डिनेटर है आप ब्रह्मा कुमारीज पानीपत सब जोन के। और इनकी विशेष क्या बोलते हैं उसको, ही वॉज इन्वाइटेड फॉर द इंस्पिरेशनल टॉक्स ऑन द फॉलोइंग चैनल्स फॉर मेनी टाइम्स, जैसे कि संस्कार चैनल पे, जी जागरण, साधना, दूरदर्शन एंड रेडियो चैनल्स। और उसी रीति से आप हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ऑनर किए गए हैं, और वो भी विशेष रीति से रिपब्लिक डे पर, और स्पीकर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ शिवाजी स्टेडियम ऑफ पानीपत। उसके साथ साथ देखिए हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से भी आईएएस ऑफिसर्स को, जो देश को चलाने वाले आईएएस ऑफिसर्स को भी मार्गदर्शन करने के लिए भाई जी को निमंत्रित किया गया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कितनी प्रतिभा इनके अंदर होगी। तो आइए हम गुणों पर प्रकाश डालने के लिए उनको निमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय भारत,
ओम शांति। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय अतिथि भ्राता नीरज कांत भट्ट जी, जनरल सेक्रेटरी बॉक्सिंग फ्रॉम दिल्ली, और साथ में गुजरात से पधारे हुए योगा इंस्ट्रक्टर ब्रदर सुरेंद्र जी, मन संचालिका बहन जयश्री जी, स्पोर्ट्स काउंसलर फ्रॉम मुंबई, एंड डियर पार्टिसिपेंट, प्रिय भाई और बहनों, आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस ज्ञान मान सरोवर के इस सुंदर सभागार में आप सबको डबल खिलाड़ियों को देखकर, इस सुंदर से सेमिनार में पधारे हुए देखकर बहुत हर्ष हो रहा है, और आप सबको इस सुंदर से सेमिनार में पधारने हेतु आपको खूब खूब हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बधाई इसलिए दे रहा हूं, आने से पूर्व मंच पे ही मुझे, मैंने किसी से पूछा कितने डेलीगेट आए हैं, कहा डेलीगेट 200 प्लस हैं, लेकिन कुछ काफी सारे डेलीगेट्स जो है 100-150, इस मौसम खराब होने के कारण, रास्ते बहुत खराब होने के कारण उनका कैंसल हो गया, कोई एक तो पूरी टीम 35 की कैंसल हो गई। तो इसलिए मैंने कहा यहां पर हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, भाग्यशाली आत्माएं, बहुत ही भाग्यवान आत्माएं, नहीं तो कोई ना कोई व्यवधान पड़ जाता है, लेकिन जिनके भाग्य का सितारा चमक रहा होता है वो इस पुण्य भूमि तपोभूमि पर पहुंच पाती हैं। तो आप आज लगभग 7-8 डेलीगेट जो मेरे शहर से भी, पानीपत से भी आए हुए हैं, भिन्न भिन्न कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, तो लंच में वो भी बता रहे थे, उनमें से एक ने कहा कि देखिए किस्मत, किसी का बना बनाया था, हमारे में लोर था, पैकिंग भी हुई पड़ी थी, सारा कुछ था, लास्ट मोमेंट पे कोई उनको पेन बैकिक में शुरू हुआ, उसका पल के उसकी मैसेज के लिए तो खास आ ही रहा था उसकी इच्छा पे के वहां जा, और वो रुक गए जब पेन इतना शुरू हो गया। मैं मन में सोच रहा था वो कमर में पेन नहीं था, वो किस में पेन था, थोड़ा ही फर्क है, वो कमर वो कर्म, कुछ कर्मों में पेन था जिस कारण चलते चलते रुक गए नहीं, कोई ना कोई कर्मों में कुछ थोड़ी सी कमी रह गई थी। आप सबका कर्म जाग उठा जो आप यहां पहुंच गए, नहीं? और उन्हीं में से ही फिर एक ने कहा, देखिए वो कैसे चलते चलते रह गए, और कोई कोई ऐसे दूर आए होंगे, मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस लास्ट डे ही किसी ने कहा और मैं झटपट तैयार हुआ और आ गया, यहां पे पहुंच गया। नहीं है कोई कोई जो समझते हैं ऐसे लास्ट डे ही तैयारी हुई सर हमारी, तो हाथ खड़ा करो, ये देखो खड़े हो अपने स्थान पे, ये देखिए खड़े हो अपने स्थान पे, ये हैं लकी स्टार्स, इनके लिए खूब तालियां बजाइए, कांग्रेचुलेशन। न मन था न चित था, ना कभी सेंटर ना ब्रह्म कुमारी का कुछ पता था, हाँ, और पहुंच गए सीधा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से एडमिशन हुआ ना? हमारे जो सेंटर हैं वो कोई छोटे सेंटर हैं वो स्कूल की तरह हैं, बड़े सेंटर रिट्रीट सेंटर कॉलेज की तरह हैं बड़े बड़े, और ये तो सीधी यूनिवर्सिटी है ना, कईयों का सीधा ही यूनिवर्सिटी से एडमिशन हो गया, लकी है ना। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर है, पावर ऑफ वैल्यूज इन स्पोर्ट्स, खासकर इस मैं क्यों डबल खिलाड़ी कहा, एक तो आपका प्रोफेशन ये स्पोर्ट से रिलेटेड है आप सब, दूसरा हो सकता है आप खिलाड़ी हैं, आपके साथ आपकी धर्म पत्नी है, वो तो प्लेयर नहीं है या खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वो भी खिलाड़ी है। एक खेल हम सबको जो ये ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहे हैं, हर एक को अपना अपना ये नाटकशाला है, सृष्टि एक नाटकशाला है, जो सुबह के सेशन में बहनें अक्सर समझाती हैं, और उसमें हर एक को कोई फिक्स रोल मिला हुआ है, तो वो नाटक में अपना अपना प्ले खेल रहे हैं, तो वास्तव में हम सब खिलाड़ी हैं। तो खेल खिलाड़ी खेल, हंस हंस के खेल, परेशान होके नहीं खेल, कभी पॉजिटिव चीजें होंगी कभी नेगेटिव होंगी, कभी खुश होगा कभी कुछ, कभी हार है कभी जीत है, तो लास्ट में फिर क्या कहते हैं, कहते अरे भाई खेल ही तो है ना, नहीं बच्चे खेलते हैं ना, एक तो आप प्रैक्टिकल बड़ी टीम में क्रिकेट में खेलते हैं, एक छोटे संडे को सब देखो ग्राउंड भरे होते हैं, सब खूब खेल रहे होते हैं, क्योंकि खेल में जबकि खेलने जब जा रहे होते हैं ये पता भी है उन्हें हम हारेंगे भी, कईयों को पता है हम जीतेंगे भी, पर जो एंजॉय कर रहे होते हैं हारने वाला भी जीतने वाला भी सब एंजॉय कर रहे होते हैं, क्यों उनके मन में होता है खेल है ना। इसी तरह इस जिंदगी को भी जो खेल समझ के चलते हैं ना वो एंजॉय करते हैं, हम ये सोच के चले हम इस सृष्टि रूपी नाटकशाला में भी खिलाड़ी हैं। रही बात पावर ऑफ वैल्यूज इन स्पोर्ट्स, मैं कुछ एक वैल्यू सोच के आया था लेकिन आके प्रिंटेड देखी कि चार वैल्यूज पे खास बताना है, और वो कौन सी हैं, डिसिप्लिन पेशेंस करेज एंड ह्यूमिलिटी, इन चारों की बहुत जरूरत है। करेज, करेजियस, साहस सब गुणों का राजा है, नहीं आप देखते हैं साहस ही नहीं मनुष्य के तो क्या कर पाएगा, जिसके अंदर ये वैल्यू है ना साहस की सारी वैल्यूज आ जाती, और स्पोर्ट्स में तो इसकी कितनी जरूरत है, हिम्मत ही कोई हार जाए तो फिर क्या होगा, इसलिए साहसी बनना बड़ा जरूरी है। कितनी बार फेलियर हो, आपने सुनी होगी एक कहानी किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की, सुनिए कि कितनी बार वो हारा, 18 बार हारा, एग्जैक्ट मैं फिगर भूल गया हूं, बट आई केम टू नो 18 के लगभग था, और हार के एक जगह जंगल में खड़ा था, दिल टूट चुका था, अब कोई फायदा नहीं, देखते देखते स्पाइडर चींटी देखी वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पूरा चढ़ती थी फिर धड़ाम गिरती थी, एक बार दो बार तीन बार 18 बार ऐसी हुई, 19 बार भी हिम्मत नहीं छोड़ी, फिर चढ़ी और आखिर वो चढ़ गई विजय प्राप्त। एकदम उसने इतनी तालियां बजाया, बहुत दिल खिल गया, रे ये नहीं हारी, इसने हिम्मत नहीं हारी, मैं क्यों हार गया। और उसने फिर पूरी हिम्मत के साथ, एक छोटी सी लिटिल ब्रिगेडियर, हिम्मत चाहिए ना। आपने सुना होगा बचपन में हम सुनते थे कविता, कैनन इन द लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन राइट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, कैनन इन बैक ऑफ देम। इधर भी तोपें, इधर भी तोपें, सामने भी तोप, पीछे भी तोप। लेकिन उसके अंदर इतना उत्साह था लिटिल ब्रिगेडियर में कि उन्होंने, जब उत्साह पूरा हो, हिम्मत पूरी हो, करेज पूरा हो, तो बड़े से बड़ा किला फतेह हो जाता है। और उसने आखिर विजय प्राप्त कर ली। ऐसी किंग ब्रूस भी फिर विजयी हुआ 18 बार, फिर नेक्स्ट हिम्मत पूरी बटोर के फिर विजयी हुआ। तो उस पर ये बन गया किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। बच्चों को भी खास पढ़ाते हैं तो करेज एक बहुत बड़ी चीज है। मैं एक और कहानी सुना, ए यंग मैन एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में बिजनेस में फेल हो गया। एट द एज ऑफ 24 ही लॉस्ट वन इलेक्शन। एट द एज ऑफ 26 वाइफ एक्सपायर्ड। एट द एज ऑफ 27 मेंटल ब्रेकडाउन। एट द एज ऑफ 35 ही लॉस्ट द सीनेट इलेक्शन। एट द एज ऑफ 45 ही अगेन लॉस्ट वन मोर इलेक्शन। एट द एज ऑफ 49 ही लॉस्ट द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। एट द एज ऑफ 52 ही वन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। होल लाइफ फेल स्टोरी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। बताओ एक कहानी और सच्ची कहानी है। जीके अच्छा है पार्टिसिपेंट का, ताली बजाइए इनके लिए। लिंकन की ये सच्ची कहानी, होल लाइफ फेल स्टोरी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तो हम क्यों हिम्मतहीन हो जाते हैं? एक बार हारे, दो बार हारे, तीन बार हारे, पर हिम्मत अगर करता रहता है तो व्यक्ति कितना बड़ा विजयी जा बनता है। हिम्मत ही जो एक नहीं, हार रहे, हारते रहे, फिर जोर लगाया, फिर जोर लगाया और कमाल हो गया। पानीपत में एक डीसी थे, डिप्टी कमिश्नर, जिसको किसी स्टेट में तो कलेक्टर कहते, किसी स्टेट में डीएम कहते, हरियाणा पंजाब में उसे डीसी कहते हैं। तो वो डीसी साहब आईएएस थे, नहीं आए थे वो, मैसेज माता पिता सबके साथ। उनको जब निमंत्रण दिया, कहने लगे हाँ माउंट आबू चलेंगे, ठीक है जी, बुक करा। मैं सर कम से कम कई डीसीज ने यस की है, लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ उनको इतने इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं जिससे वो नहीं पहुंच पाए। कहते अच्छा वो दूसरे डीसी होंगे, पर ये सुन लो, मुझे चाहे कोई भी काम आ जाए, मैं नहीं रुकने वाला हूं, मैं पक्का चलूंगा। और सचमुच वो डिटरमाइंड थे। और लास्ट मोमेंट पे उनके ऊपर भी बहुत आया, क्योंकि ये तीन पोस्ट ऐसी हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया में। कौन कौन सी? एक डीएम, एक सीएम और एक पीएम, जिन पे काफी जिम्मेवारी रहती है। इट्स में पहले जाके सीएम को चंडीगढ़ में मिलके कहा, सर ये मेरा फाइनल प्रोग्राम बना हुआ है और मैं बहुत वर्षों से इच्छा है। एडीसी साहब होंगे, सर मैं आपसे छुट्टी चाहता हूं, कृपया मुझे। उनका कोई बात नहीं, मैं जाओ भाई, रस होगी तुम जाओ, सीएम से ही छुट्टी ले, इतने हिम्मत चाहिए ना। अब वो आए, आए तो फिर कई सुंदर सी बातें उन्होंने अपने जीवन की, करेजियस की एक कहानी सुनाई। वो कहते हैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और जॉब भी लग गया, पर मेरी मां की एक इच्छा थी बार बार, अनु बेटे मेरी एक इच्छा है, तू पूरी करेगा मां की? क्या? कि तू, मैं इन आंखों से तुझे डीसी देखना चाहती हूं, डीसी बनना चाहिए, कलेक्टर। तो वो कहे मां एक आसान काम, लेकिन बेटे तू इच्छा पूरी करना चाहता है तो कर, ये पूरा जोर। तो उसने मां की इच्छा पूरी करने के लिए ठान ली, अपनी जॉब करते हुए आईएएस के एग्जाम देता रहा। देता रहा, एक बार रह गया, फिर सेकंड अटेम्प्ट फिर किया, फिर कुछ मां ने कहा बेटे लास्ट बार एक बार फिर कर दे, इच्छा पूरी कर। अब उसको भी था चलो भाई कह ही रही है, फिर तीसरी बार फिर जोर लगाया और फिर अब की बार पूरा जोर लगाया था। अब आप देखो एग्जाम देने जा रहे हैं दिल्ली में कहीं जहां उनका था एग्जाम, बाइक पे जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, रोड पे पड़े हो और रोड पे पड़े हुए चोट लग गई, सोचा अब कभी मैं अपनी मां की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब इस हालत में तो कैसे जाते, परंतु विधाता को कुछ और मंजूर था। एक कोई गाड़ी वाला, उसने देखा कोई नवयुवक पड़ा हुआ है बाइक पे और चोट लगी हुई है, उसने साइड में की, उसे उठाया, क्या हुआ बेटे, ऐसे ऐसे मेरे को, अच्छा अच्छा अच्छा, उसको ले गया, कहा मैं थे क्या ट्रीटमेंट सर, बस कहां जा रहे थे तुम, बताया मेरा एग्जाम था आईएएस का, अच्छा। तो वो इतना भला मानस मिला, उसने आराम से उसकी कहीं तो बाइक खड़ी की, फिर उसको फटाफट कहीं ट्रीटमेंट करा के एग्जाम, कहते एग्जाम नहीं मिस करना, एग्जाम नहीं मिस करना, मैं तुझे पूरा सहयोग दूंगा, कार में ले गया और जाके एग्जाम दिलाया। कैन यू बिलीव, उस वक्त उसका आईएएस में 10th रैंक आया। एक दिन वो प्रैक्टिकल में डीसी लगे, मां को भी साथ लाया था मां के सामने कि इतनी खुश हुई अनु बेटे तूने मेरे, अनुरागग्रस्त हो गए उनका। आज की डेट में वो सीनियर मोस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के हैं। अब सबसे टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है सारे आईएएस में, इज द नेक्स्ट, बस अब चीफ सेक्रेटरी बनने वाले हैं। इसे कहते हैं हिम्मत। हिम्मत करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता, है चीज कौन सी वह जिसे पा नहीं सकता, हिंते मर्दा मद्दे खुदा। हाँ? तुम हिम्मत का एक कदम उठाओ, यही तो करेज है, मैं मदद के हजार कदम उठाऊंगा, ये भगवान का वायदा है। हिम्मतहीन के बोल बुजदिलों के निशाने, कायरों के निशाने, पता नहीं मेरे को नहीं लगता, मेरा दिल टूट चुका, कितने लोग हिम्मत हार बैठते हैं, कितने स्टूडेंट्स। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल ट्रेनर, आई हैव डिलीवर्ड लेक्चर ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट ऑल ओवर इंडिया इन मोर देन 50 कंट्रीज, और मैं कई जगह लेक्चर में, जब ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल इंस्टीट्यूट भी, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी, लेक्चर करते करते मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूं। स्पोर्ट्स वालों में भी कई जगह गया हूं, पटियाला वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेरा लेक्चर हुआ है, उसमें पहले प्रतिज्ञा कराता हूं, क्या आप सच जवाब देंगे, कि बिल्कुल। पहला क्वेश्चन होता है, जिनको एक्सट्रीम टेंशन है कृपया हाथ खड़ा, किसी कारण, फिजिकल कारण। आपसे भी पूछ लेता हूं, सच्चाई से जवाब देंगे, भगवान के घर में बैठे हैं आप सब, सच्चाई से जवाब देंगे, देंगे, सभी बोले हां या ना, ओके देंगे। पहला प्रश्न, यहां आने से पहले घरेलू परिस्थितियों में, चाहे घर के कारण, चाहे धंधे के कारण, चाहे आपके खिलाड़ी जीवन, किसी भी कारण से, जिनको एक्सट्रीम टेंशन, बहुत अधिक टेंशन रहता है, कृपया सच्चाई से हाथ खड़ा करें। हो सकता है आप सच्चाई से हाथ खड़ा करेंगे, आज से ही भगवान वरदान दे दें और आपका टेंशन खत्म हो जाए। करिए करिए करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10, 12, 20 के लगभग, इनके लिए तालियां बजाएं, सच बोला। सेकंड क्वेश्चन, कि फिर सर कभी कभी ये टेंशन इतना ज्यादा सवार हो जाता है दिमाग पे कि हमें कभी कभी सुसाइडल थॉट भी चलते हैं, क्या है यार ये कुछ जिंदगी है, इससे तो मर जाए, ऐसे जिसको कभी कभी सच्चाई से सुसाइडल थॉट भी चलते हैं वो हाथ खड़ा करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, ताली बजाए, इनकी भी सच बोला। अब तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सच बोलने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। सच देंगे जवाब आप सब? देंगे पक्का? तो आप दिल को थाम लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि सर फिर ये कभी कभी सुसाइडल थॉट, एक काला दिन ऐसा भी आया जो इतने हैवी हो गए मेरे ऊपर, इतने हैवी हो गए कि मैंने प्रैक्टिकल सुसाइड का अटेम्प्ट किया। ये अलग बात है, भगवान ने, डॉक्टरों ने, मेरे घर वालों ने मुझे बचा लिया, पर मैंने प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया था। जिसने कभी किया सच्चाई से वो हाथ खड़ा करो। वन वन, यस यस, टू, अच्छा दो तीन, अच्छा इनके लिए भी ताली बजाएं, सच बोला। आई एम सॉरी, तीन, ओके देख लिया। तो आई एम सॉरी के आप प्लीज कोई भी इनसे पूछने की चेष्टा नहीं करना भी क्या हुआ था क्योंकि इन्होंने जब एक संकल्प एक आध्यात्मिक विभूति ने कराया सच सच बताने का, पर्सनल लाइफ कोई बताता नहीं है जल्दी, लेकिन यहां सब जरूर बता देते हैं। तो अब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इस वैल्यू का, करेज। आप सोचिए जरा। और मुझे आज तक एक भी इंस्टीट्यूट नहीं मिला, इवन मेडिकल कॉलेज में भी 25 हाथ खड़े थे, एक्सट्रीम टेंशन है, 18 हाथ खड़े थे जिन्होंने कहा सुसाइडल थॉट चलते हैं, 8 हाथ खड़े थे जिन्होंने कहा हमने अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी, सुसाइड का अटेम्प्ट किया लेकिन हमें बचा लिया। बहुत अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूट में भी ये देखा। और छोड़िए, सबसे बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट अपने इंडिया की कौन सी है? एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली कभी गूगल पे जाके देखिए, इन एवरी 6 मंथ एक डॉक्टर सुसाइड कर जाता है। मुझे वहां के किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बताया था, ये एक लेक्चर में हमने पानीपत बुलाया, डॉक्टर उषा किरण थे। मैं कैसे कैसे सच बात, मैंने फिर गूगल में देखा सचमुच, तो मैंने कहा किस कारण करते हैं, इतनी मुश्किल तो एडमिशन मिलता है, इतनी ऊंची इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलना और डॉक्टर बनना। कहती बस प्रेशर, वर्कलोड बहुत होता है, 24-24 घंटे काम करना पड़ता है और छोटे जूनियर डॉक्टर बड़े उन पे बहुत हावी होते हैं, तो इस कारण जो है उनको डांट क्या वो क्या, और फिर बहुत काम, कभी कभी 48 घंटे डॉक्टर का तो ऐसा ही होता है इमरजेंसी में। कहते फिर वो सोचते हैं क्या है लाइफ है, मर जाओ इससे, डॉक्टर की भी तो आफ्टर ऑल लाइफ है ना। सुबह डॉक्टर क्लिनिक में आता, हम कई जगह डॉक्टर को एड्रेस करते हैं कि दुनिया को कहते हैं अगर स्ट्रेस है ना तो समझ लो आप बीमारियों को जन्म दे रहे हो। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 80% डिजीज आर ड्यू टू मेंटल टेंशन। कहते परंतु हम उनको तो दवाई देते हैं, परंतु क्या करें हमें भी स्ट्रेस कम नहीं। बा क्यों? कि सुबह क्लिनिक में आते हैं, पेशेंट आता है, हाँ भी बता तुझे क्या तकलीफ है, अच्छा दवाई दे, फिर दूसरा हाँ भी बता तुझे क्या तकलीफ है, सुबह से लेके शाम तक ये पूछते पूछते हाँ भी बता तुझे क्या तकलीफ, हाँ बता तुम्हें क्या तकलीफ, क्या शाम तक हम खुद तकलीफ में हो जाते हैं कहते आप कहते हो ना जैसा संग वैसा रंग, सारा दिन तकलीफ वाले को साथ मिलते मिलते हम भी तकलीफ में हो जाते हैं। तो करेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करेजियस। ऐसे खेल में भी बहुत, आपने एक नाम सुना होगा, अच्छा कोई बिहार से भी आए हाथ खड़ा करना? हाँ, एक अरुणिमा सिन्हा, आपने सुना होगा नाम। वो भी एक बार जाते जाते, उससे आपको पता लगा होगा कि ट्रेन से उसको कुछ आए बदमाश और गर्द, और फिर उसके एक टांग तो कट गई और दूसरी, फिर सारी रात पड़ी रही वहां रेलवे लाइन पे। उसने बताया अपनी स्टोरी में, इतनी गाड़ियां, आई थिंक 70 ट्रेन सारी रात भर पास हुई, फिर सुबह गांव वालों ने देखा चूहे खा रहे हैं उसको, फिर उसे लेके गए पर हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत कोच थी कोई अच्छी बड़ी, वो थी कोई उसकी अपनी कैप्टन थी किसी खेल की, हाँ वॉलीबॉल की। फिर उसे ले गए, फिर ऊपर एम्स में भेजा, पर हिम्मत बड़ी थी, मर जाती रात को ही मर जाती, लेकिन पूरी हिम्मत थी, भगवान मैंने जीवन जिस लक्ष्य से ले लिया है मैंने पूरा करना। आखिर देखो उसकी हिम्मत ने उसको बचा दिया। किसी ने उसका कुछ छीनना चाहा, उसने मुकाबला किया, तब उसका हो। तो अब सोचिए फिर लास्टली क्या हुआ। फिर भी वो देखो उसकी हिम्मत, उसकी इच्छा थी मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, गई सारे हंसने लगे पागल, वहां अपना सबमिशन कराने के लिए, तू कैसे तेरा टांग, कहती आप मेरी मेरा उमंग तो देखिए, उसका उमंग सुन के, और आखिर उसने माउंट एवरेस्ट विजय प्राप्त की। ये करेज। इसी तरह दूसरा पेशेंस, कहते हैं ना पेशेंस पेशेंस पेशेंस, इफ देर इज नो पेशेंस डेफिनेटली यू विल बिकम पेशेंट। थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस पेशेंस, है ना। हम धीरज खो बैठते हैं, धीरज नहीं खोना चाहिए, धैर्यता है तो सब कुछ है। कई बार सिचुएशन नहीं चेंज होती, वी कांट चेंज द सिचुएशन, बट वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड सिचुएशन। हम हालात को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम ख्यालात में तबादला जरूर ला सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए पेशेंस रखें। परिस्थिति, जिस परिस्थिति से आप परेशान हैं, जो अब हाथ खड़ा किया हम एक्सट्रीम टेंशन में, 25 के लगभग हाथ खड़ा किया, जिसके कारण आपको एक्सट्रीम टेंशन है, और फिर दोबारा हाथ खड़ा किया कि सुसाइडल थॉट चलते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो और हिम्मत करो, फेस करो, कुछ टाइम बाद टोटल ऑल टुगेदर वो सिचुएशन बदलने वाली है, लेकिन हम पेशेंस नहीं रखते। पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है, स्पोर्ट्स में भी इसकी कितनी जरूरत है। पेशेंस रखो, ट्राई ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। बार 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 प्रयास करो, लेकिन चिल्लाओ नहीं अपनी फेलियर पे। इसलिए इसमें पेशेंस की बहुत आवश्यकता है, इसको भी जीवन में धारण करना है। फिर जीवन में एक डिसिप्लिन, जिंदगी में डिसिप्लिन, आप देख रहे हो ब्रह्मा कुमारी के यहां डिसिप्लिन कितना है, सुबह से लेके रात तक। यहां तो छोटा ग्रुप है, नीचे देखा करें आप, अभी आएगा 31 अक्टूबर, फिर 15 नवंबर, फिर 30, हर 15 दिन बाद 20,000 की गैदरिंग होती है, और एक भी डंडा लेके नहीं घूम रहा होता, ओए खाना फटाफट बनाओ लोग आ रहे हैं, ओए ये करो, कुछ नहीं। आपको लगेगा ऑटोमेटिक मशीनरी चल रही है, सारे काम हो रहे हैं। डिसिप्लिन। मैं जो रस्तोगी जी का बताया, डीसी साहब का, उनका जाके वहां हमने अनुभव रखा था और सैकड़ों लोग इकट्ठे किए थे, उन्होंने कहा लाखों रुपए की पेमेंट देने पे भी हम ऐसा डिसिप्लिन स्थापन नहीं कर सकते जो मैंने माउंट आबू में देखा। और सोचिए ये कितना जरूरी है डिसिप्लिन। यहां पर डिसिप्लिन सिखाया जाता है, हाँ, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, मॉर्निंग सेशन कभी ना मिस करना, मेडिटेशन का। अगर आप अपना डिसिप्लिन अपने जीवन में उस पर नहीं पा सकते, फिर कैसे। तो बहुत जरूरी है। अर्ली टू बेड, कहते हैं अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। प्रैक्टिकल क्या है, लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी अनवाइज। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए, ये भी डिसिप्लिन जीवन में धारण करें। और स्पोर्ट्स में भी जो भी हमें इशारे मिलते हैं कोच से, किससे, रूल्स रेगुलेशन वट एवर, हमें पूरा डिसिप्लिन में चलना चाहिए। उससे फिर हमें विजयश्री हमारे गले में पड़ती है। अनुशासन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अनुशासन भंग होने से कई बार बहुत बड़ी बाजी खो बैठते हैं हम, इसलिए हमें अनुशासन में रहना अति आवश्यक है। जीवन को वैसे बंधन अच्छे नहीं होते, परंतु पतंग देखो बंधी होती है, परंतु कितना अच्छा लगता है और ऊपर उड़ती है और ऊपर उड़ती है। ये श्रेष्ठ नियमों का, नैतिक मूल्यों का बंधन, वो तो एक बहुत ही श्रेष्ठ बंधन है, उसको जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। और लास्ट लास्ट वैल्यू है ह्यूमिलिटी, हमारा नम्रता है, नम्रता भी चाहिए ना, नहीं तो ईगो बहुत आ जाता है। फलानी वृक्षा नमंती, फल वाले वृक्ष झुके होते हैं, गुणानी जना नमंती, सज्जन पुरुष भी झुक जाते हैं। फिर कहा दुष्ट पुरुष और सूखा पेट, वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और इसको कहीं अकड़ के कहते हैं, कहते टूट जाएंगे हम, बिल्कुल झुकेंगे नहीं। कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं इसके पीछे। अरे भाई, जब कोई ऐसी बात नहीं तो थोड़ा क्या फर्क पड़ता है, नम्रता में क्या फर्क पड़ता है। आप जानते हैं सद्दाम हुसैन गल्फ वार जो हुई थी, अमेरिका बार बार कहता रहा कि तेरे पास कोई जैविक अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, उसने कहा नहीं है। कहते तू चेक करा, कहते चेक नहीं कराऊंगा। इस बात पे इतना अड़ गया, अल्टीमेटली क्या हालत किया, कितना सारा राष्ट्र बर्बाद हुआ, आखिर उसको पकड़ा और राष्ट्र में फांसी चढ़ाई गई। क्या फायदा हुआ? मैं अमेरिका को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, चलो उसका सम्मान था, नहीं चेक करा रहा था, उसका भी ईगो है। लेकिन दूसरी ओर कोई व्यक्ति एक जिद पे उतर आया, मैं अपने सारे राष्ट्र को जरूरी बर्बाद करना है। आज ये क्या चल रहा है, ईगो के पीछे ही तो चल रहा है। रशिया यूक्रेन जो भी आप देख रहे हो, यूक्रेन में भी देखो, चलो मानते हैं उधर से भी गलती है, लेकिन एक व्यक्ति तो कम से कम वो हो जाए, देख ले कहीं ना कहीं कंपर पर राष्ट्र की बर्बादी नहीं होने देंगे। एक भी व्यक्ति मेरे पैर पकड़ने से एक भी व्यक्ति बचता है तो मुझे बचाना चाहिए। और आज सारा राष्ट्र खत्म हो गया, कितने लाखों प्लान कर गए, कितने लाखों मारे गए, लेकिन अकड़ नहीं टूटी मनुष्य को। इसलिए हमारी बहनें अक्सर करके सुनाती हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, जान होगी ना झुक जाएगा, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है, डेड बॉडी आप देखना अकड़ जाती है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम दूंगा समय की सीमा के कारण, और आपको शुभकामनाएं दूंगा। आप सब प्लीज एक मेरी अगर स्वीकार करें, शुभ भावना कहूं, रिक्वेस्ट कहूं, आप जाने के बाद मैं तो चाहूंगा रेगुलर आप एक बार आधे घंटे के लिए भी जाएं, लेकिन अगर आप आधा घंटा ना जाएं, डेली नहीं जा सकते, वंस ए वीक जरूर जाएं। जो मेरी संकल्प पूरा करेंगे वो हाथ खड़ा करें कि जरूर हम सेंटर से जुड़ेंगे, ऊंचा करेंगे। ओके, सबके लिए ताली बजाएं। एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पर एक बार इंजीनियर कॉन्फ्रेंस थी, 10 चीफ इंजीनियर एससीज को लाया, उन सबने भी संकल्प किया था। आते हुए वो ताश खेलते हुए आ रहे थे, गप्पे मारते हुए, जाते हुए आबू रोड से ट्रेन पकड़ी, उन्होंने यही बात की, उषा दीदी क्या सुनाया, उसने क्या सुनाया, उसने क्या सुनाया। जब अजमेर ट्रेन पहुंच गई फिर ताश निकाल के बैठ गए। मैंने कहा क्या हो गया, कहते ऐसे है जी, अब हमारी आत्मा मैग्नेटिक जोन से बाहर आ गई है, अभी आप मैग्नेटिक जोन में बैठे हो, वहां जाके भी संकल्प को पूरा निभाना। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बड़ी सुंदर रीति से आपने इन गुणों पर प्रकाश डाला है। और निश्चित इस रीति से आपके ध्यान में आया होगा कि हमारे अंदर अगर गुण है तो हम सहज ही परिस्थितियों पर नियंत्रण पाते हैं, और परिस्थितियां भी बताते हैं कि हमारे अंदर में कौन से गुण है और कौन से गुणों की कमी है। पेशेंस के बारे में भाई जी बता रहे थे तो मुझे अचानक महाराष्ट्र का जो क्रिकेटर है अजिंक्य रहाणे, उसकी याद आई। उसने अपने संस्था से मेडिटेशन सीखा है। उसने एक दिन मेरे को कहा कि दीदी देखो ना, पुरानी बात आई है, मैं इतना, मेरे पास सारी विशेषता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन अभी तक मुझे टीम में जगह नहीं मिल रही है। तब हम लोगों ने उसको समझाया कि तुम्हारे अंदर पे इतने गुण हैं, और वाकई वो इतना गुणी खिलाड़ी है। आपने कभी भी देखो उसको, हमेशा शांति ही पाया होगा, बहुत कम बात करने वाला, और विनम्रता की तो कोई सीमा ही नहीं। तो हमें हमेशा लगता था कि ये एक दिन जरूर कैप्टन बनेगा, वाइस कैप्टन बना हुआ मुझे याद है, लेकिन कैप्टन बना के नहीं, मुझे याद नहीं है। लेकिन गुण में आगे क्या वो बनने वाला ये भी बताते हैं। तो इस रीति से ये जो क्लासेस चल रहे हैं तो आपको भी अंदर में टटोलना है कि मेरे अंदर में कौन से गुणों की कमी है, जो है वो है, वो तो कार्यान्वित होंगे ही है, तो उस पर भी ध्यान देंगे। दूसरी बात एक मैं बताना जरूर चाहूंगी, क्योंकि इस फील्ड से मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ, मैं टेबल टेनिस प्लेयर थी, इसलिए अध्यात्म और गेम का समन्वय अच्छी तरह से जानती हूँ। ये जो हमें पीछे बैठने की ये आदत है ना, इसको आपको छोड़ना होगा। जब आप खेल में कोई मेडल जीतना चाहते हैं, सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो शुरू से ही आगे बैठने की कोशिश करें, कभी भी पीछे नहीं बैठे। आप लोग जितने नजदीक बैठेंगे ना, आपको विन विन वाइब्रेशंस मिलेंगे, वरदान मिलेंगे, तो वो कैच करने के लिए आपकी वहां नजदीकी उपस्थिति जरूरी होती है। तो चलती है अगले गेस्ट की तरफ। तो अभी हमारे मध्य उपस्थित है आदरणीय मिस्टर नीरज कांत भट्ट जी, जो जनरल सेक्रेटरी बॉक्सिंग है, दिल्ली से आए हुए हैं। एज अ प्लेयर्स उन्होंने 7 times नेशनल मेडल्स लिए हैं, 3 times ऑल इंडिया रेलवे चैंपियन रह चुके हैं, एशियन कैंप ट्रेल 85 to 89 ये किए हैं, कोच वे रहे हैं 92 से 2000 तक, फिर चीफ कोच ऑफ इंडियन रेलवे बॉक्सिंग टीम के आप रहे हुए हैं और करंट में जनरल सेक्रेटरी दिल्ली बॉक्सिंग। जोरदार तालियां लेकर हम उनसे अभी सुनेंगे। भाई जी,
ओम शांति। यहाँ आए हुए मेरे भाइयों बहनों को मेरा सर झुका के नमन, मंच में बैठे मेरे भाइयों को नमन, बहनों को नमन। मुझे आप लोगों के सामने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ आप लोगों का। मैं बॉक्सिंग गेम से हूँ, मैं दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ बॉक्सिंग में, इससे पहले भी रह चुका हूँ मैं, और ये अब दोबारा मुझे चांस मिला था तो मैंने इसको ग्रहण किया। जहाँ तक खेलों की बात के लिए हम आए यहाँ उसके सेमिनार के लिए, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि जाने का दिल ही नहीं कर रहा, लग रहा है यही कुछ दिन रह जाए, मगर जाना तो है, मंजिल हमारी कहीं और है। यहाँ तो हम टाइमिंग के लिए आए हैं, तो मुझे आशा है आप लोग भी बहुत मजे में रह रहे हैं। बाकी बात जहाँ खेलों की हो रही है, उसमें जहाँ मेरे हिसाब से एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन जो हम अपने बच्चों को बताते हैं वो जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके स्टूडेंट भी और हम खुद कोच भी जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तब तक हम अपनी मंजिल नहीं पा सकते। तो हम जितना ज्यादा हो सके बच्चों को बताएं। और फिर दूसरी चीज क्या है, आजकल हम लोग जल्दी लांगने की, मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट देने की कोशिश भी करते हैं कि आज लिया और कल हमें मिल जाए, वो भी गलत है। उसमें क्या होता है, एक तो पीरियड बहुत छोटा हो जाता है बच्चे का, जो भी हम खिलाते हैं जिसको, तो उसमें हम क्या गलत तरीके अपनाते हैं, ठीक है ना। कुछ हम आजकल जो बहुत जगह ड्रग्स का बहुत चल गया है, तो कोच भी क्या करते हैं भैया जल्दी जल्दी बच्चे, बल्कि कोच नहीं बताते, बच्चे आजकल बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो उसको अपनाने लग गए हैं। तो उस पर हम जितना ध्यान देंगे, एक तो बच्चों की लाइफ बनेगी ठीक से, ठीक है टाइम लगता है रिजल्ट आने में, मगर रिजल्ट मिलेंगे। तो उस चीज को हम थोड़ा अवॉइड करवाएं बच्चों से कि भैया कि थोड़ा देखें कि वो ड्रग्स वगैरह ना ले, उस पर ध्यान दें, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। आज तो ठीक है वो ले लेगा, मगर आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं कई देख रहा था हमारे कई बॉडी बिल्डर्स वगैरह बॉडी बनाने के लिए लेते थे चीजें, तो उसमें क्या बाद में उनका ऐसा हाल हो जाता है कि वो फिर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसी तरह खेलों में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये आपका डिसिप्लिन ठीक रहेगा, हम बताएंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, तो उस चीज का जरा ध्यान दें हम कोचिज वगैरह, और बच्चे भी जो खेल रहे हैं वो भी इस पे ध्यान दें, तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि समाज में हम बच्चे क्या कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी, मतलब रिजल्ट का तो है ही कि बच्चे रिजल्ट लेना चाहते हैं, खेल रहे हैं और कई कहते हैं आज क्या और कल हमें रिजल्ट मिल जाए, वो गलत है चीजें जो देखने में आ रही है। तो उस चीज को जरा रोका जाए, कोच ध्यान दें, प्रैक्टिस करवाएं तरीके से, वो चीजें होती है। और डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है गेम में, ठीक है ना, जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहेगा वो बहुत बढ़िया रहता है गेमों में। और गेम में क्या, जिंदगी में भी हम डिसिप्लिन से रहेंगे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है कि डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो और बल्कि मैं तो कहता हूँ जो स्पोर्ट्समैन है वो होते ठीक है, सब कुछ बढ़िया है उनका, डिसिप्लिन में रहते हैं सब कुछ, मगर क्या कि जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में वो गलत उसमें आ जाते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है आप लोगों से सबसे कि जो भी हमारे कोचेज हैं, प्लेयर हैं, इस पर ध्यान दें, ठीक है ना, और अच्छे रिजल्ट देंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बाकी मैं कुछ ज्यादा बोलना तो नहीं आता, मगर ठीक है जो बात है, ठीक है, और बाकी धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर धीरज कांत भट्ट जी, आपने अनुभव तो सबके सामने रखे, लेकिन एक भावना उन्होंने व्यक्त की है कि यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है, लेकिन ज्यादा होगा जाएंगे, लेकिन अनेक खिलाड़ियों को, कोचेस को लाने के लिए आप अवश्य निमित्त बनेंगे, है ना, ऐसे सभी करेंगे ना। हाँ, जो आपने पाया है वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उनको भी प्रेरणा देंगे। अभी हमारे पैनल में जो अंतिम अतिथि है हमारे सुरेंद्र भाई जी, वो ब्लेसिंग देंगे हमें सभी को। आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, आप गुजरात से पधारे हुए हैं और उनकी विशेषता यह है कि आप 27 साल से ज्ञान में हैं, ब्रह्म कुमारीज के संपर्क में, और योगा ट्रेनर फ्रॉम गुजरात स्टेट योगा बोर्ड। विशेष है ये भी पद उनका, पूरे गुजरात राज्य के लिए ही वे सेवा देते हैं, और कारपोरेट योगा ट्रेनर भी है। तो ऐसे हस्ती को जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और ब्लेसिंग पाते हैं, आदरणीय सुरेंद्र भाई जी।
थैंक यू। जय श्री दीदी जी, ओम शांति सभी को। मैं चाहता हूं कि थोड़ा कुर्सी की बैक रेस्ट छोड़ के थोड़े सीधे स्पाइन को सीधे करें, थोड़े से आगे आ जाए, ऐसा। डेढ़ घंटे से बैठे हैं, कुछ फुल डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले हमारे यहाँ पर 4:30 बजे से ही आ चुके हैं, तो उनके लिए थोड़ा समय हो गया है। दोनों हाथ की उंगली एक दूसरे के साथ लगाए, ऊपर उठाए, बैठे बैठे हैं,
खींचे ऊपर।
ये जो आलस्य नाम की बला है ना, वो कुर्सी से धीरे धीरे मस्तक तक पहुंचती है, तो पूरा शरीर हिला के उसको फिर वापस नीचे ले जाना है। बहुत सुंदर, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे बेहद खुशी है कि हमारे भारत भूषण भाई जी ने सारे सद्गुणों को बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ ब्रीफ किया, और हमारे भट्ट साहब ने भी बहुत सुंदर तरीके से अपने अनुभव को सुनाया। कहने का मतलब ये है कि आज एक सिगरेट का पैकेट होता है, उसके ऊपर भी कुछ सावधानियां लिखी हुई होती है। हर चीजों के ऊपर अपनी एक सावधानी होती है। कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर ऐसा नहीं होता है जिसको सद्गुण और अवगुण की पहचान न हो, लेकिन व्यक्ति चाहकर भी ये सब कर नहीं पाता है, होता है ना सबके साथ, संसार के अंदर यही समस्या है। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज के अंदर एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब यहां पर आप आओगे तो सद्गुण तो जागृत होगे ही, वो तो ऑटोमेटिक है, क्योंकि वो हमारा स्वधर्म है, वो नेचुरल है। लेकिन अवगुणों को अगर दूर करना है तो उसके लिए परमात्मा की मदद हमेशा हमारे ऊपर होती है। यहां केवल ज्ञान नहीं दिया जाता है, ज्ञान के साथ साथ परमात्मा की शक्ति हमें मिलती है, ये सूक्ष्म रूप में मिलती है, हमें पता नहीं चलता है कि हमारे भीतर के अवगुण कैसे कैसे निकल गए। हम दो दिन से ढाई दिन से बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस सुन रहे हैं ना, बहुत कुछ मन के अंदर ऐसा ठान लिया है कि जाकर हम ये करेंगे वो करेंगे। और जैसे भाई साहब ने बताया कि एक मैग्नेटिक ओरा है ना, यहां से जैसे ही आप शांतिवन से आगे जाओगे, कोई ट्रेन में पांव रखेगा, कोई फ्लाइट में पांव रखेगा, कोई बस में पांव रखेगा, तो वहां तीरंदाज तीर लेके सब खड़े ही है। सामना तो फिर हमारे जीवन के अंदर वही करना ही है। तो यहां परमात्मा की जो शक्ति है वो आपको हमेशा के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। लेकिन रेगुलर हमारी ये जिम्मेवारी है, जैसे एक बीज को एक छोटे से पौधा बनाना, पौधे से वृक्ष बनाना, वृक्ष से फल लेना, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो हमारा, हम भी एक छोटे से बीज समान है, हमें भी अपने आप को तैयार करना है। यहाँ स्वयं को तैयार करना वो स्वयं की जिम्मेवारी है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं। आप कोचिस हो, आप ट्रेनर हो, आप कोई भी हो, सबको पता है कि आप केवल कह सकते हो, किसी के शरीर में घुसकर करा नहीं सकते हो। ये हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हम खुद ही करके कुछ साबित कर सकते हैं। तो दो तीन दिन से जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, इसमें कुछ बातें कॉमन है। जैसे आज भाई जी ने भी बताया कि आप बहुत भाग्यशाली हो, बताए ना, बड़ा अच्छा लगता है। ताली बजाते हैं किसके लिए? ताली बजाते हैं, बजाओ ऐसा नहीं बोला है ना, हम हमारे लिए ताली बजाते हैं। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। वैसे तो आप अभी तीन दिन से हमारे साथ हो तो परिवार के ही हो गए हो, तो मैं बता देता हूँ रहस्य। एक्चुअली ये रहस्य किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन आप परिवार के हो तो बता देता हूँ। ये जो सौभाग्यशाली है, आपका सिलेक्शन हुआ है, परमात्मा ने आपको यहां तक पहुंचाया है, ये सब बातों के पीछे जो परमात्मा की इंटेंस है आपको लाने की, कि परमात्मा को पता है कि विश्व की इतनी सारी आत्माओं में से आप कुछ ऐसी चंद आत्माएं हैं जो मेरे कर्तव्य को अपने कंधे पे उठा के समाज तक पहुंचा सकते हो। आप संसार की वो आत्माएं हो जो इस परमात्मा के कार्य की जिम्मेवारी को अपने कंधे पर लेकर के समाज तक पहुंचा सकते हो। ये परमात्मा ने आपके अंदर देखा है, तभी परमात्मा की आज्ञा से आप यहां तक पहुंचे हो। इसको आप देख लेना, आप अनुभव कर लेना। भाई साहब ने बताया कि हिम्मत का एक कदम किसका? हमारा। हजार कदम परमात्मा हमारे साथ देने के लिए बड़ा कर खड़े हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेवारी हमें मिली है, क्या जिम्मेवारी मिली है? राजयोग की है ना। जिस जिम्मेवारी को हमें निभाना है, क्या करना है, यहां से जाते ही हमें नजदीकी सेवा केंद्र के ऊपर अपना कांटेक्ट करना है और कहना है कि मैं ब्रह्मा कुमारीज में गया, तीन दिन चार दिन का स्पोर्ट्स विंग कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद जो जो आपने पाया है वहां जाके मुझे कुछ करना है। क्योंकि आपके अंदर की शक्ति को जागृत कर दिया। आज सवेरे एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी कि हनुमान जी के भक्त कौन है, ना हाथ भी उठवाया था। मेरे ख्याल से यहाँ वो सवेरे वाले यहाँ अभी बैठे ही होंगे हनुमान जी के भक्त, मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूँ। देखिये हमारे बलवान जी तो एनर्जेटिकल ही होते हैं हमेशा, हनुमान जी के भक्त। अभी जो भक्त होता है, जो जिस भगवान को मानता है उसमें कुछ सिमिलरिटी होती है, तभी वो उस तक पहुंचता है। मेरे विचार अगर इन भाई साहब से मिलते हैं तो ही मैं उनके पास पहुंचता हूँ। मेरे विचार अगर हनुमान जी से मिलता है तो ही मैं उनके पास पहुंचता हूँ। हनुमान जी के पास बहुत बड़ी प्रचंड शक्ति थी। आपको पता है बचपन की शैतानियां उनकी बड़ी बड़ी शास्त्रों में वर्णन की गई है, लेकिन इसी शैतानियों के कारण उनको कह दिया कि आप उस शक्ति को भूल जाओगे। लेकिन उसके साथ साथ एक वरदान दिया कि अगर कोई उस शक्ति को याद करेगा तो आपके अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी। ऐसी ही एक शक्ति थी उनके पास, फ्लाइंग, उड़ने की शक्ति थी, पता है ना, शास्त्रों में अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, सबको मालूम है। फिर इनकी शक्ति को कौन जागृत करता है? जामवंत जी जागृत करते हैं, और जैसे ही जागृत करते हैं उनका शक्ति काम करना शुरू कर देती है। यहां पर आप सब हनुमान जी के स्वरूप में ही बुलाए गए हो, यहां आपकी शक्ति को जागृत किया जाता है। अभी आपका कर्तव्य है, अभी आपका कर्तव्य है कि जो बुराई की लंका है जिसके कारण कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। देखो प्लेयर्स थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है ना तो सबसे पहले उसके कॉलर खड़े हो जाते हैं कि मैं कुछ हूं, और वहीं से फिर आप सब तो कोच हो, आप सबको पता है कि किस किस प्रकार की समस्या आती है। तो जो शक्ति आपके भीतर जागृत हुई है उस शक्ति समाज के अंदर देकर उस विकारों की लंका को जलाने की जिम्मेवारी परमात्मा ने आपको दी है, दी है ना। कौन कौन इस जिम्मेवारी को उठाने के लिए तैयार है? वेरी गुड, मतलब जो हनुमान जी के भगत है वो तैयार है, बाकी को थोड़ा हनुमान जी तक लाना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने हाथ उठाया है उन सबको मुबारक। हमारा कर्तव्य है, स्पोर्ट्स विंग हमेशा आपके साथ है। आपके इनविटेशन के अंदर हमारे डॉक्टर जगबीर भाई जी का नंबर होगा, हमारी अदिति बहन जी का नंबर होगा, यानी आप जिस भी सेंटर पे भी अगर आप नजदीक के सेंटर पे जाओगे और स्पोर्ट्स विंग की बात करोगे तो आपको कोई ना कोई नंबर देकर आपका कॉन्टेक्ट करवाएंगे। आप वहां पर जरूर एक छोटा मोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करें, यहां से आपको स्पीकर भेज दिए जाएंगे। जो प्रोग्राम देखो आज हर कोई यहां नहीं आ सकता है, लेकिन हम एक स्पीकर को बुलाकर वहां 50-100 का काम कर सकते हैं ना। तो ये जिम्मेवारी को हम सब बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना शुभ भावना। खूब खेलो, अच्छी तरह से खेलो, मस्ती से खेलो, मौज से खेलो, जीतो, अपना नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो, और विश्व फलक पर हमारे देश का झंडा लहराओ। यही शुभ भावना शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई जी, आपने तो इतनी ठूस ठूस कर सभी के अंदर ऊर्जा भर दी है, इतनी प्रेरणादायी आपने ब्लेसिंग दी है, तो आपके लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करेंगे सभी की ओर से। अभी हमारे समय की सीमा समाप्त हो गई, अगला कार्यक्रम भी अभी होने जा रहा है, तो सभी का धन्यवाद देते हुए और उपस्थित मान्यवरों को भी धन्यवाद देते हुए परमात्मा की याद में हम 2 मिनट बैठे। अच्छा भाई ने याद दिलाया कि उपस्थितियों का हम सम्मान करेंगे, तो जरूर हम बहनों को निवेदन करते हैं कि आप जो भी गिफ्ट है वो लेकर आए।